हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में आज हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर एसएस बंसल फ्रॉम मेट्रो हॉस्पिटल। आप जिंदगी में टेंशन जरूर पालते हैं लेकिन हाइपरटेंशन क्या होता है ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। इस मिथ को भी आपकी जो बात है उसको क्लियर करेंगे। ये सारी बातें हमारे साथ करेंगे डॉक्टर एसएस बंसल। फिलहाल तहे दिल से उनका स्वागत करना चाहूंगी रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में।
धन्यवाद भावना, और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रेडियो मानव रचना का कि उन्होंने हाइपरटेंशन की इम्पोर्टेंस को समझा। उस पर्पस को जो है बेसिकली मीडिया से अच्छा कोई माध्यम नहीं है कि उस पर्पस को जो उसका पर्पस है उसको सर्व करने का बेस्ट तरीका मीडिया है, और आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाइपरटेंशन और टेंशन में क्या फ़र्क है? हाइपरटेंशन जो है वो एक अलग चीज़ है, टेंशन एक अलग चीज़ है। काफ़ी लोग इस चीज़ को कंफ्यूज करते हैं कि भी जो टेंशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए दिमाग में तो उसको हाइपरटेंशन कह देते, पर ये एक मिथ है, ये एक गलत कंसेप्ट है, क्योंकि हाइपरटेंशन का लिंक बीपी से है। हमारे ब्लड प्रेशर हाई हो तो हम उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, और जो दिमाग की टेंशन है उसको हम एंग्जाइटी कहते हैं। दोनों में आपस में ये लिंक है कि किसी को अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो टेंशन से उसका बीपी और बढ़ जाता है, लेकिन ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना बिना टेंशन के भी ज़्यादा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जिसको टेंशन होगी उसी का बीपी हाई होगा, जिसको टेंशन नहीं है उसका भी बीपी हाई हो सकता है, जेनेटिकली हाई हो सकता है। तो हाइपरटेंशन और टेंशन को डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। तो ये समझना ज़रूरी है कि हाइपरटेंशन क्या है और टेंशन क्या है। हाइपरटेंशन मींस हाई ब्लड प्रेशर, नॉट हाई टेंशन। ठीक है,
आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर एसएस बंसल फ्रॉम मेट्रो हॉस्पिटल, और हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स की। अब ये तो हमें पता लग गया है कि हाइपरटेंशन जनरली कॉज किससे होता है, हाई ब्लड प्रेशर से, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ज्यादा कॉमन है। चलिए एक डेटा जानने की कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब से कि कितने ऐसे लोग हैं जो इस बीपी की बीमारी से सफर कर रहे हैं, और शायद उन लोगों को भी ये नहीं पता है कि उन्हें ये बीमारी है।
भावना, ये एक्चुअली बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वर्ल्ड की 25% जो पॉपुलेशन है, 25% पॉपुलेशन वर्ल्ड की ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रसित है, और इंडिया के अंदर मतलब 25% का ये मतलब हो गया कि 100 करोड़ के लगभग लोग जो हैं दुनिया में उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, और इंडिया के अंदर जहाँ पे 100 करोड़ की पॉपुलेशन है यहाँ भी 25% के करीब लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। तो आप 100 करोड़ की पॉपुलेशन में आप समझ लो 25 करोड़ लोग हिंदुस्तान के अंदर ब्लड प्रेशर की बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तो एक तो ये बीमारी जो है इतनी कॉमन है, दूसरा अर्बन पॉपुलेशन में ज़्यादा कॉमन है। अर्बन पॉपुलेशन में 25-30% लोगों में है, और रूरल पॉपुलेशन में भी 10-15% लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, और जैसे आदमियों में है वैसे ही फीमेल, मेल और फीमेल दोनों को है। मेल में अगर 23% लोगों को है अगर जनरल पॉपुलेशन में लें, तो फीमेल में 22%, ऑलमोस्ट सेम है, मतलब कि जितने इंसिडेंस या प्रेवलेंस मेन में है उतनी विमेन में है। उसके अलावा आप ये सोचो कि 13% डेथ जो है दुनिया में वो ब्लड प्रेशर की बीमारी की वजह से होती है। 13% डेथ तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, इतनी डेथ्स होती हैं पूरी दुनिया में उसमें से 13% ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं। तो अगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लिया जाए तो वो 13% डेथ कंट्रोल की जा सकती है। तो इट्स ए ह्यूज ह्यूज बर्डन ऑन द सोसाइटी।
डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगी कि जिस प्रकार आपने बताया कि 13% डेथ ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से होती है, यानी हाई ब्लड प्रेशर से होती है, तो क्या ऐसे सिम्टम्स हैं एक नॉर्मल आदमी ये जान सकता है कि सबसे पहले तो उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, और अगर मान लीजिए उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसे कैसे पता लगे कि उसका ब्लड प्रेशर हाई है?
एक्चुअली ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है वो लगभग काफ़ी लोगों में साइलेंट रहती है जी। तो उसके कोई लक्षण होते नहीं, उसके कोई सिम्टम होते नहीं, इसीलिए इसको हम साइलेंट किलर बोलते हैं। मतलब एक आदमी जो ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहने के बावजूद वो कहता है जी मुझे कोई तकलीफ नहीं है तो मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊं, क्योंकि वो कभी बीपी चेक ही नहीं कराता तो इसको पता ही नहीं होता कि मेरे को बीपी की प्रॉब्लम है। तो ज़्यादातर लोगों में तो ये साइलेंट होती है, पता नहीं चलता, पर कुछ लोगों में जब बीपी सडनली इंक्रीज होता है, किसी का तो लगातार हाई रहता है तो उसको कुछ नहीं पता चलता, जिसका सडनली चेंज होता बीपी तो उसका हेडेक हो सकती है, उसको चक्कर आ सकते हैं उसको, और अगर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो हार्ट पे लोड पड़ने से उसको सांस फूल सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है। अदरवाइज कई बार ब्लड प्रेशर के पेशेंट का सीधा ब्रेन की नस फटने से, ब्रेन हेमरेज से वो हॉस्पिटल में अनकॉन्शियस कंडीशन में आते हैं, तब पता चलता है कि बीपी हाई था इसका। तो उससे पहले वो कहता है जी मेरे को तो कोई बीमारी ब्लड प्रेशर जैसी थी ही नहीं। हम कई बार इको करके देखते हैं, इको में पता चलता है कि हार्ट बहुत मोटा हो गया और बीपी उसका कई सालों से हाई है, लेकिन वो कहता है जी मैंने कभी बीपी चेक कर ही नहीं कराया, मेरा बीपी कभी था ही, मैंने मुझे पता ही नहीं कि बीपी हाई है। तो ये प्रैक्टिकली बाय एंड लार्ज साइलेंट डिजीज है।
सब यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगी कि जितने भी लिसनर्स रेडियो मानव रचना के थ्रू आपको सुन रहे हैं, एक स्टैंडर्ड टाइम क्या है जब इंसान अपना बीपी जरूर चेक करवाएं?
बीपी की बीमारी ज़्यादातर जो है जेनेटिक है, फेमिलियल है, तो वो जो फेमिलियल और जेनेटिक 90% से लोग ज़्यादा लोगों को वो जेनेटिक बीमारी होती है, फेमिलियल जीन्स में होता है ब्लड प्रेशर। तो वो जीन्स वाला जो ब्लड प्रेशर है वो 30 की एज के बाद यूजली हाई होता है, 30 की एज तक वो नॉर्मल रहता है, दैट इज़ एन एवरेज। किसी का 20 साल की उम्र के बाद हाई हो जाता है, किसी का 40 के बाद, ऑन एन एवरेज 30 के बाद जेनेटिक ब्लड प्रेशर मैनिफेस्ट करता है। लेकिन एक ब्लड प्रेशर होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है जो किडनी की बीमारी, थायराइड की बीमारी, एड्रिनल ग्लैंड की बीमारी, जो बॉडी के ऑर्गन्स की बीमारी की वजह से होता है। एक होता है वो ब्लड प्रेशर, सेकेंडरी हाइपरटेंशन वाला जो ब्लड प्रेशर है वो बच्चों में ही हाई हो जाता है। तो और एक कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा कंडीशन होती है जो जन्म से होती है, उस कंडीशन में बिल्कुल छोटे बेबी का भी बीपी हाई हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो एक बच्चा जब पैदा होता है उसके एक साल के अंदर एक बार चेक हो जाए, उसके बाद उसका हर 5-5 साल में एक बार चेक हो जाए, तो मुझे लगता है कि दैट इज़ सफिशेंट। पर जिसका हाई निकल आया उसका जब तक कंट्रोल नहीं होता तब तक चेक करना पड़ता है। इस तरह से है ये बीपी, किसी भी एज में हाई हो सकता है।
तो एवरेज आई सपोज महीने में एक बार आप अपने लिए थोड़ा सा समय निकालें और अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवाएं, जिससे आप और कुछ नहीं हाइपरटेंशन से जरूर दूर रह सकते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन की। डॉक्टर एसएस बंसल मेट्रो हॉस्पिटल से हमारे साथ यहां पर हैं और हमारे सभी लिसनर्स को जानकारी दे रहे हैं कि आप हाइपरटेंशन से दूर कैसे रह सकते हैं और इस बीमारी को अपने से दूर कैसे कर सकते हैं। एक स्वस्थ जीवन जीना बहुत जरूरी है आजकल की हमारी हेक्टिक लाइफस्टाइल और साथ के साथ सिडेंटरी लाइफस्टाइल, ये कारण है बहुत सारी बीमारियों का। और फिर हम बड़े ही शान से कहते हैं ये तो हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि आप शान से कहें कि हमें दुनिया में कोई भी डिजीज नहीं है। हम आपको ये बता दें कि एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है और अगर इस नॉर्मल ब्लड प्रेशर को आप एडजस्ट करके चलते हैं, फॉलो करके चलते हैं, तो आपको एटलीस्ट हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम तो नहीं होगी।
जो नॉर्मल बीपी है भावना, वो नॉर्मल बीपी एक एडल्ट का 120/80 होना चाहिए। तो एक हम हाई बीपी किसको बोलते हैं, हाई बीपी हम 120/80 से ज़्यादा होगा तो हाई बीपी नहीं बोलते, हम कहते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर शुड बी आइदर 120/80 और लेस देन दैट। 110/70 इज ऑल्सो नॉर्मल, 120/80 इज ऑल्सो नॉर्मल। बट हाई बीपी मीन्स जो सिस्टोलिक बीपी है यानी कि ऊपर वाला बीपी अगर 140 या उससे ज़्यादा हो, और नीचे वाला बीपी यानी कि डायस्टोलिक बीपी अगर 90 या 90 से ज़्यादा हो, तो उसको हम हाई बीपी बोलते हैं। तो अब हमने नॉर्मल को तो 120/80 ले लिया, हाई वाले को 140/90 ले लिया, तो जो उसके बीच में आ गए लोग उनको हम हाई नॉर्मल बोल देते हैं। मतलब दे आर नॉर्मल बट दे आर हाई नॉर्मल। तो हाई नॉर्मल का में से कुछ लोग हाई ब्लड प्रेशर में चले जाएंगे, कुछ लोग नॉर्मल ही रहेंगे, तो उनको फिर क्लोज सुपरविजन की ज़रूरत होती है, बार बार चेक कराने की ज़रूरत होती है, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है। तो फिर जब ब्लड प्रेशर हाई होता है उसमें फिर हम कैटेगरीज बना लेते हैं, माइल्ड हाइपरटेंशन, मॉडरेट हाइपरटेंशन एंड सीवियर हाइपरटेंशन। तो जो माइल्ड हाइपरटेंशन है जिसका मान लो 140 से 160 के बीच में है, तो वो हम माइल्ड टू मॉडरेट कह लेते हैं। जिसको हम वन नीचे वाला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर नीचे वाला 90 से 100 है तो माइल्ड हो गया, 100 से 110 है तो मॉडरेट हो गया, और 110 से ज़्यादा है तो सीवियर हाइपरटेंशन हो गई। तो आदमी को ये पता होना चाहिए कि मैं नॉर्मल में हूँ, हाई नॉर्मल में हूँ, और या मैं हाई ब्लड प्रेशर में की रेंज में हूँ। अगर हाई ब्लड प्रेशर की रेंज में हूँ तो मैं माइल्ड में हूँ, मॉडरेट में हूँ कि सीवियर में हूँ। तो जितना आपका, अगर आप सीवियर में हो तो यू नीड चेकअप मोर फ्रिक्वेंटली। तो ब्लड प्रेशर की रेंज जो है अपनी हर एक को पता होनी चाहिए।
डॉक्टर साहब, एक बहुत कॉमन सी चीज़ है और शायद हमारे भारतवर्ष में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, और वो है फ्री एडवाइस और फ्री मेडिकेशन। हर इंसान सेल्फ मेडिकेशन में लगा रहता है, और जब बात कर रहे हैं हम हाइपरटेंशन की या ब्लड प्रेशर की, तो बिलीव मी हर घर में एक ऐसा अपैरेटस होता है जो बीपी नाप सकता है, और जब हम बीपी चेक करते हैं तो सेल्फ मेडिकेशन की बहुत प्रॉब्लम है। लोग अपने आप ही बीपी की दवाई लेते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी, मेरे पापा या फिर मेरे बड़े भैया या फिर कोई फला इंसान बीपी की ये दवाई ले रहा था, तो मुझे लगा आज मेरा ज़्यादा है, मैं भी यही दवाई ले लेता हूँ। तो मुझे लगता है ये एक सबसे बड़ा कारण है कि लोग सेल्फ मेडिकेट जब करते हैं, उसके कारण वो ऐसी बीमारियों को न्योता देते हैं कि वो शायद बड़ी बन के एक जटिल प्रॉब्लम बन जाए।
भावना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि इंडिया के अंदर हर आदमी डॉक्टर है, हैं? इंडिया के अंदर हर आदमी मेडिकल सलाह देने आता है। हमारी ओपीडी में पेशेंट बैठे होते हैं, अगर एक पेशेंट के साथ बाई चांस दूसरा पेशेंट आ जाता है तो पहले पेशेंट के क्वेश्चन का जवाब हम दें उससे पहले दूसरा देना शुरू कर देता है पेशेंट, जो खुद डॉक्टर, जिसने कभी कोई पढ़ाई की नहीं मेडिकल की। एक्चुअली सेल्फ मेडिकेशन जो है ना, इट्स ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम। जैसे मुझे 20 साल की पढ़ाई करनी पड़ी है टू गिव मेडिसिन टू ए पेशेंट, तो 20 साल में पहले MBBS की, फिर इंटर्नशिप करी, फिर MD करी, फिर DM करी, उसके बाद इतने साल प्रैक्टिस में हो गए, उसके बाद भी हमें इतना पढ़ना पड़ता है डेली बेसिस पे, इतनी एडवांसमेंट होती है, इतनी फास्ट मेडिसिन चेंज हो रही है, इतनी सेफर एंड सेफर मेडिसिन आर अवेलेबल जिनके साइड इफेक्ट कम होते जा रहे हैं, बेटर एंड बेटर ड्रग्स आर कमिंग इन द मार्केट, तो इतनी नॉलेज हमें होती है, तो इसलिए पेशेंट को कोई ज़रूरत ही नहीं है रिस्क ले और अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करे। उसको एक्सपेरिमेंट करने की बजाय उसको जब एक्सपर्ट एडवाइस अवेलेबल है वो उनके हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से चले, तो वो सेफ रहेगा, उसका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा और उसको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे।
डॉक्टर साहब, एक और बात जानना चाहूँगी, ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा लो रेटेड है, यानी इसको कोई भी ये नहीं मानता है। मान लीजिए आपको कोई कह देता है आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो सब सजग हो जाते हैं परिवार में, लेकिन अगर किसी को कहा जाता है आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो सब बड़ा नॉर्मली लेते हैं, कोई बात नहीं भाई बीपी की दवाई ले लीजिएगा और आप ठीक रहेंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है और जो हमारे बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को ख़राब कर सकती हैं, तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियाँ हैं?
ब्लड प्रेशर जो है इसको हम साइलेंट किलर इसलिए बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है ना, बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन है वो पूरे आर्टेरियल सिस्टम में जिस प्रेशर से हमारे खून दौरा करता है वो प्रेशर जो है वो ब्लड प्रेशर है। जिसका हाई ब्लड प्रेशर होगा वो सारी धमनियों को प्रेशर से डैमेज कर देगा, तो सबसे ज़्यादा सीरियस जो प्रॉब्लम होती है वो होती है ब्रेन में। जितने ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं 51% की डेथ जो है वो ब्रेन की प्रॉब्लम्स की वजह से होती है, चाहे वो ब्रेन हेमरेज हो जाए, चाहे ब्रेन की आर्टरी में क्लॉट बन जाए। होता क्या है कि जो ब्लड प्रेशर की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से ब्रेन की नसों में डैमेज हो जाता है, वहाँ फिर जो अंदर की लेयर है वो डैमेज हो जाती है, तो उसमें क्लॉट बन सकता है, और कई बार नस का कोई कोई पॉइंट इतना वीक हो जाता है, पतला हो जाता है कि वो वहाँ पे एन्यूरिज्म बन जाता है, मतलब वो फूल जाती है नस वहाँ से, फिर वो अचानक फट जाती है तो ब्रेन हेमरेज हो जाती है। तो सब 51% लोगों की डेथ तो होती है ब्रेन स्ट्रोक से, 45% पेशेंट्स की डेथ होती है हार्ट डिजीज से जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। तो ब्लड प्रेशर साइलेंटली अंदर है लेकिन वो अंदर बॉडी को डैमेज कर रहा है, ब्रेन को, आर्टरीज को डैमेज कर रहा है, किडनी की आर्टरीज को डैमेज कर रहा है, हार्ट की आर्टरीज को डैमेज कर रहा है, पेशेंट को पता नहीं चल रहा है, वो डैमेज स्लो प्रोसेस में होता है, इट इज़ ए स्लो पॉइजन, तो इट इज़ डैमेजिंग योर इंटरनल ऑर्गन्स वेरी स्लोली, यू विल नेवर कम टू नो। तो हार्ट के अंदर क्या करता है, हार्ट को हाई प्रेशर के अगेंस्ट काम करना पड़ता है, तो हार्ट मोटा होता चला जाता है, हार्ट के मसल थिक होते जाते हैं, फिर धीरे धीरे हार्ट जो है इतने प्रेशर का लोड नहीं ले पाता है, तो हार्ट फेल होने लगता है, हार्ट बड़ा हो जाता है, हार्ट एनलार्जमेंट हम जिसको बोलते हैं, फिर हार्ट वीक होना शुरू हो जाता है जिसको हार्ट फेलियर बोलते हैं, और जो हार्ट की नसें हैं जो खून देती हैं हार्ट को खुद को, वो नसें डैमेज हो जाती हैं बीपी से, उनमें फिर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, उनमें फिर क्लॉट बन जाते हैं, उससे हार्ट अटैक होते हैं, उससे एंजाइना होता है। तो 45% पेशेंट्स जो बीपी के होते हैं उनको हार्ट की वजह से डेथ होती है उनकी, 51% की स्ट्रोक से होती है, 45% की हार्ट से होती है, और उसके बाद बच गए कितने, 4%, उन 4% लोगों की किडनी फेलियर से डेथ होती है। किडनी की जो आर्टरीज हैं उनमें हाई प्रेशर से जब ब्लड फ्लो करता है तो उनको किडनी की जो फिल्टर है, किडनी का, किडनी हमारा एक फिल्टर है जो बॉडी के ब्लड के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करके बाहर निकालता है यूरिन में, वो किडनी का फिल्टर खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है हाई प्रेशर से, तो किडनी फेलियर हो जाता है बाद में, फिर पेशेंट या तो डायलिसिस पे रहेगा और या उसकी किडनी फेलियर से डेथ हो जाती है। तो इसलिए जो हाई ब्लड प्रेशर है ये इतनी बिनाइन चीज़ नहीं है जितना हम इसको समझते हैं, ये 10 साल में 20 साल में डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ हाई ब्लड प्रेशर ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करता है। तो इसलिए आपका बड़ा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट था कि ये ब्लड प्रेशर जिसको हम ऐसे लाइटली लेते हैं, ये इतना लाइटली लेने वाली चीज़ नहीं है।
यूं तो आप सड़क पर जब चलते हैं और आप गाड़ी चलाते हैं तो आप उसको बहुत एंजॉय करते हैं, और ये बिल्कुल हमारे ब्लड प्रेशर जैसा है, लेकिन वही गाड़ी की स्पीड अगर तेज़ हो जाए तो किसी की जान भी ले सकती है, और अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो ये आपकी जान भी ले सकता है। लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है, और ये सारी बातें हमें बता रहे हैं डॉक्टर बंसल। कोई भी ऐसी क्वेरी, कोई भी ऐसी परेशानी अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8010781078। ये आपको पता लग गया कि हाई बीपी क्या होता है और इसके कारण कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो आप शायद कैजुअली कभी पेन किलर समझ के खाते हैं या फिर अपने बुखार का इलाज करने के लिए खाते हैं, और वो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती हैं। तो कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं या कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, और जिस प्रकार डॉक्टर साहब ने कहा कि सेल्फ मेडिकेशन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, इससे बचना चाहिए और डॉक्टर की एक्सपर्ट एडवाइस से ही मेडिकेशन लेनी चाहिए।
भावना जी, जो बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जिनसे बीपी बढ़ सकता है, खास तौर पे जो सबसे कॉमनली यूज चीज़ है वो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं वो बीपी बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए कभी भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स अपने डॉक्टर को पूछे बिना ना लें। पहले उनसे सलाह करें, अगर आपको बीपी की टेंडेंसी है, हाई बीपी की टेंडेंसी है, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी अवॉइडेड। तो एक तो सबसे बड़ी कॉमन चीज़ ये है। दूसरा, जितने पेन किलर्स आते हैं उनमें पेन किलर्स में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं। एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जैसे वोवरेन हो गई, ब्रूफेन हो गई, निमोलिड हो गई, ये निमू जो आम काउंटर पे जो कॉम्बीफ्लेम हो गई, इस तरह की जितनी दवाइयाँ हैं ये एक दो दिन लेने के लिए तो ठीक हैं, अगर आप इनको लगातार लेते हैं तो इनसे बीपी आपका अनकंट्रोल्ड हो सकता है। तो जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनको पेन किलर भी डॉक्टर से पूछ के लेना चाहिए। काफ़ी सेफ पेन किलर अवेलेबल हैं, पर ज़्यादातर जो एक ग्रुप है पेन किलर का पूरा, भी उनसे बीपी बढ़ सकता है। तीसरा, स्टीरॉयड्स हैं। स्टीरॉयड्स बहुत सारी बीमारियों में हमें स्टीरॉयड्स के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती है, पर काफ़ी जो क्वैक्स हैं, आरएमपीज़ हैं, वो स्टीरॉयड कई बार या पेशेंट जो हैं इमीडिएट रिलीफ के लिए कई बार स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टीरॉयड्स अननेसेसरली कभी नहीं लेने चाहिए, उनसे बीपी भी बढ़ता है, शुगर भी बढ़ती है। तो एक अनदर इम्पॉर्टेंट ड्रग इज स्टीरॉयड्स। उसके अलावा जितनी खांसी की सिरप हैं, जुकाम की दवाइयाँ हैं, इनमें सूडोएफेड्रिन होती है जिससे नाक खुलता है, जो डीकंजेस्टेंट हैं उनके अंदर भी होती है सूडोएफेड्रिन, कैफीन, इन सब से बीपी बढ़ता है। फिर उसके अलावा जो बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं कॉमनली यूज ड्रग्स की मैं बात करता हूं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो आप आम लोगों के मतलब की नहीं हैं, जो स्पेसिफिक कंडीशन में दी जाती हैं, तो वो आपके डॉक्टर को पता होता है। तो आप जो भी दवाइयां लें डॉक्टर की सलाह से लें। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट कॉमन दवाई है जैसे माइग्रेन के लिए यूज़ करते हैं, वेसोग्रेन है, सुमेट्रिप्टान है, ये ड्रग्स भी बीपी बढ़ा सकती हैं। तो स्टीरॉयड्स बढ़ा सकते हैं, पेन किलर बढ़ा सकते हैं, खांसी की दवाइयां बढ़ा सकती हैं, वेट कम करने की दवाइयां बीपी बढ़ा सकती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बीपी बढ़ा सकते हैं। तो आप जो भी दवाई लें, बेटर है कि आप इतनी चीज़ें याद नहीं रख सकते, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लें।
जी हाँ, एक बहुत ही कॉमन सी कहावत है, बचपन में आपने भी सुनी होगी, जिसका काम उसी को साजे। तो अगर ये आपका काम नहीं है तो इसमें आपको बिल्कुल भी कूदना नहीं चाहिए। एक और चीज़, जहाँ हम बात कर रहे हैं ड्रग्स की जो बीपी बढ़ा सकती हैं, वहीं पर ऐसी बहुत सारे खाने की हमारी डाइट है जो आपका बीपी बढ़ा सकती है, और शायद डेली आप उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं। हंसते हंसते आप कहते हैं आई जस्ट लव कैपेचिनो, पर क्या आपने कभी सोचा है कि कैफीन या कॉफ़ी वो भी आपका बीपी बढ़ा सकती है? कौन कौन सी ऐसी डाइट है जो बीपी बढ़ा सकती हैं, यानी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती हैं, और इनसे हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए या इन्हें मॉडरेशन में लेना चाहिए?
भावना, जो खाने की चीज़ें जो खास तौर पे हमारा वेट बढ़ाती है ना, जैसे ही वेट बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में आपका बीपी बढ़ेगा। तो जो चीज़ें मोटा मोटी जैसे तली हुई चीज़ें हैं, फ्राइड चीज़ें हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, डायरी प्रोडक्ट्स हैं, फुल मिल्क, जो होल मिल्क हम जिसको बोलते हैं, जो हमारे लोग जो हैं वो कहते हैं जी अगर आपने मलाई निकाल दी फिर उसमें बचाई क्या, तो जो मलाई वाला दूध है, फुल क्रीम मिल्क है, वो उससे वेट बढ़ता है, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उससे बीपी भी बढ़ता है। उसके बाद रेड मीट से बीपी बढ़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है अल्कोहल। अगर खाने में आप शाम को हर रोज़ अल्कोहल लेना पसंद करते हैं शाम को, तो आपको मेरी सलाह है कि 60 ml से ज़्यादा ना लें। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अल्कोहल जो है वो बीपी को बढ़ाता है। स्मोकिंग भी लोग खाने की तरह की चीज़ है, अल्कोहल और स्मोकिंग जो रूटीन में हर रोज इस्तेमाल करते हैं, तो स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों से बीपी बढ़ता है। उसके बाद आपका जितनी फैट वाली आइटम्स हैं, चिकनाई वाली आइटम्स हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, चिप्स हैं, फास्ट फूड है, इन सब से बीपी बढ़ता है। अगर मैं ये कहूँगा अगर खाने की कौन सी चीज़ें हैं जिनसे बीपी कम होता है, जिन चीज़ों में पोटाशियम ज़्यादा है, जिन चीज़ों में मैग्नीशियम ज़्यादा है, जिनमें कैल्शियम ज़्यादा है, इन चीज़ों से बीपी कम होता है। आप पोटाशियम वाली चीज़ें कौन सी हैं? फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, जूस है, इनमें पोटाशियम होता है, कोकोनट वाटर है, इन चीज़ों से ब्लड प्रेशर कम होता है। तो जो पेशेंट बीपी के मरीज हैं जो भी, उनको पोटाशियम रिच फूड लेना चाहिए, यानी कि प्लेंटी ऑफ फ्रूट, प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स। उसके अलावा कैल्शियम जो है वो आप डबल टोन मिल्क लें या टोंड मिल्क लें। मिल्क इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम के लिए आपको वो इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा फ़िश ले सकते हैं, अगर आप नॉन वेज अच्छा लगता है तो आप फ़िश ले लें, चिकन ले लें, बट आप उस रेड मीट को अवॉइड करें। तो ये खाने में दूसरा नट्स जो होते हैं, ड्राई फ्रूट है, दैट इज़ गुड फॉर हार्ट ऑल्सो, फॉर ब्लड प्रेशर ऑल्सो। जी
डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया कि किन किन खानों को आप खा सकते हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है, नॉर्मल रहता है और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, जब बात शुरू हुई है हाइपरटेंशन की तो बहुत सारी इंटर रिलेटेड बातें हैं जो मैं इनसे जानना चाहूंगी। अब बात करते हैं हमारी लाइफस्टाइल की। आज के दौर में भागदौड़ भरी जिंदगी है और किसी के पास वक्त नहीं है, फॉर दैट मैटर 24 घंटे में हमारे पास 10 मिनट नहीं होते हैं अपना ख्याल रखने के लिए। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा बिजी हैं। ऐसी हेक्टिक लाइफस्टाइल में हमने डेवलप कर ली हैं बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस और इसके कारण हमने कई बार अपना ब्लड प्रेशर हाई कर लिया है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हाई ब्लड प्रेशर का, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर?
भावना, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो काफी खराब है। वो इसलिए 90% पेशेंट जो मेरी ओपीडी में आते हैं वो स्ट्रेस में होते हैं। तो उनका जितने बीपी के पेशेंट हैं मेरे, मैं तो हर रोज़ कम से कम 40-50 बीपी के पेशेंट देखता हूँ, उनमें से 90% से ज़्यादा अंडर स्ट्रेस होते हैं। तो हमने अपने लाइफस्टाइल को बड़ा स्ट्रेसफुल बना लिया है और हम इतने कैरियर कॉन्शियस हो गए, हम अपने लिए ना एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालते हैं, ना मतलब अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। जो लाइफस्टाइल में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल चीज़ें हैं जो हमें हाई ब्लड प्रेशर देती हैं वो हैं, एक तो वेट। जैसे आप अगर ओवर ईटिंग करते हैं, सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो आप वेट गेन करते जाते हैं तो बीपी आपका बढ़ता जाता है। दूसरा है एक्सेसिव इनटेक ऑफ सॉल्ट भी। आप अगर सॉल्ट का वर्ल्ड WHO कहता है कि भी चाहे आपका बीपी नॉर्मल है, चाहे आपका बीपी हाई है, आपको पूरे दिन में 15 ग्राम से ज़्यादा सॉल्ट नहीं इस्तेमाल करना है, फॉर एवरीबडी। अच्छा, फिर भी हमारे काफ़ी लोग जो हैं वो जैसे टीवी देखते रहेंगे, साथ में चिप्स खाते रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आप एक्स्ट्रा सॉल्ट अंदर जा रहा है आपके। तो दूसरा प्रोसेस्ड फूड है भी, जो आजकल के लाइफस्टाइल में क्या हो गया कि आप किचन में काम नहीं करना चाहते हैं, आप सारी रेडीमेड चीज़ें खरीदना चाहते हैं मार्केट से और उनको फ्रिज में स्टोर कर देते हैं, निकालते हैं, खा लेते हैं, वो सारा प्रोसेस्ड फूड है, वो उसमें साल्ट बहुत होता है। तो फ्रेश जो चीज़ें बनती हैं, जो घर का खाना है, उसमें इतना साल्ट नहीं होता। तो आपको एक्सेसिव सॉल्ट जो है उसको अवॉइड करना है, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना है, जो प्रिजर्व्ड चीज़ें हैं उनको नहीं इस्तेमाल करना, फ्रेश चीज़ों को इस्तेमाल करना है। ये लाइफस्टाइल में एक इम्पॉर्टेंट चेंज है। एक्सरसाइज जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर रोज़ आपको आधे घंटे से एक घंटे तक अपने ऊपर टाइम आपको निकालना है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज आपको एक घंटा नहीं निकाल सकते तो आधा घंटा निकाल लो। उसमें आपको दो तरह की एक्सरसाइज होती है, एक आइसोटोनिक, एक आइसोमेट्रिक। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनको तो सिर्फ आइसोटोनिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। आइसोटोनिक का मतलब होता है जैसे साइकिलिंग है, स्विमिंग है, ब्रिस्क वॉकिंग है, रनिंग है, जॉगिंग है, बैडमिंटन खेलना, लॉन टेनिस खेलना, इस तरह की जो एक्सरसाइज है ना, इनको ये अच्छी होती हैं बीपी के पेशेंट के लिए। आधा घंटा वो करना चाहिए रोज़ फिजिकल एक्सरसाइज। दूसरे एक्सरसाइज होती हैं आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक होती हैं जैसे वेट लिफ्टिंग, बुल वर्कर, डंबल, ये जो जिम के अंदर होती हैं। ये जो एक्सरसाइज हैं ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए वर्जित हैं, ये नहीं करनी चाहिए। इनसे नीचे वाला बीपी बढ़ता है और जिस पेशेंट का अगर बीपी पहले से हाई है और जब वो इस तरह की एक्सरसाइज करता है उसके हार्ट को नुकसान होता है, उसके ब्रेन को नुकसान होता है। तो ये जिसमें मतलब कि आपकी एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो रही, तो आपके मसल जो हैं दे आर अंडर टेंशन बिकॉज ऑफ द वेट और डंबल, तो वो एक्सरसाइज जो है हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को नहीं करनी चाहिए। तो लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज करनी जरूरी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो भी जानना जरूरी है, खाना क्या है वो भी जरूरी है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो चीज़ें और हैं कि आपको स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी, स्मोकिंग से बीपी बढ़ता है, टोबैको के इस्तेमाल से बीपी बढ़ता है। जब आप स्मोक करते हैं विद ईच पफ योर बीपी गोज अप, तो दैट ऑल्सो इज़ वेरी हार्मफुल। दी अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एल्कोहल। अगर आप अल्कोहल एक या दो पैग से ज़्यादा लेते हैं तो उससे भी आपका सिस्टोलिक बीपी बढ़ जाता है। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आई थिंक अगर कोई ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर ले, अपनी डाइट ठीक कर ले, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा ले और अपनी एक्सरसाइज रोज करें, वेट रिड्यूस करें, अल्कोहल कम करें, स्मोकिंग बंद करें। इतना सब करने से आपका 10 मिलीमीटर बीपी तो वैसे ही ठीक हो जाता है। तो 10 मिलीमीटर नीचे वाला, 10 मिलीमीटर ऊपर वाला बीपी, अगर आपका मतलब अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आपका 10 मिलीमीटर मैंने आपको बताया कि नीचे वाला और 10 मिलीमीटर ऊपर वाला बीपी ठीक हो जाता है। तो इसलिए अगर आपका ब्लड प्रेशर माइल्ड हाइपरटेंशन कैटेगरी में है, मतलब कि आपका बहुत ज़्यादा नहीं है, मॉडरेट या सीवियर हाइपरटेंशन नहीं है, हाई नॉर्मल है या माइल्ड है, तो बिना किसी दवाई के सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस ये जो मैंने बताए ये करने से आपका बीपी नॉर्मल हो जाता है। और अगर आपका मॉडरेट और सीवियर है तो आपकी जो नंबर ऑफ़ टैबलेट, अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लेते हो तो आपकी नंबर ऑफ़ टैबलेट कम हो जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लाइफस्टाइल आप ठीक करें। लाइफस्टाइल के अंदर जो मैंने आई विल जस्ट रिपीट, अल्कोहल मिनिमम करें या बंद कर दें तो बहुत ही अच्छा, स्मोकिंग बंद कर दें, डाइट में आप वेट कम करने के हिसाब से फैट्स बंद कर दें, स्वीट्स बंद कर दें, एक्सरसाइज आधा घंटा एक घंटा रोज अपनी एक्सरसाइज को इतना टाइम एक्सरसाइज पे जोर लगाएं।
थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आई थिंक हमारे लिसनर्स को पता लगी हैं हाइपरटेंशन से रिलेटेड, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि हाइपरटेंशन के बारे में शायद हमें भी नहीं पता था, जो इतनी बेहतरीन जानकारी हमें दी। फिलहाल जाने से पहले डॉक्टर साहब मैं चाहूंगी कि आप हमारे सभी लिसनर्स को एक संदेश जरूर दें।
मेरा जो संदेश है वो यही है कि आप 25% लोग जो हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और 75 लाख डेथ पूरी दुनिया में हर साल ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि किसी की भी डेथ ब्लड प्रेशर की वजह से ना हो, बिकॉज इट इज़ इजीली प्रिवेंटेबल थिंग। और सिर्फ आप अपने बीपी चेक कराने में 2 मिनट लगते हैं। सभी लोगों को मेरा संदेश है, अपना बीपी साल में एक बार जरूर चेक कराएं। अगर बीपी ज़्यादा है तो अपने डॉक्टर के आप परामर्श लें, वो आपके कुछ थोड़े से टेस्ट हैं, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, अल्ट्रासाउंड करके देख लेंगे कि किडनी हेल्दी है कि नहीं, एड्रिनल ग्लैंड हेल्दी है कि नहीं, आपका इको करके देख लेंगे कि हार्ट मसल थिक तो नहीं है, उसके अलावा कोई ब्लड प्रेशर का सेकेंडरी हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर के कारण जो है बॉडी में कारण होते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, वो रूल आउट हो जाती है। तो अपना चेकअप, अगर आपका बीपी हाई है तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें, डॉक्टर की सलाह लें, कुछ वो जो टेस्ट बोलते हैं बेसिक 2-4 टेस्ट वो करवाएं, ताकि आपको पता चले आपका बीपी है क्यों, ज़्यादा क्यों है, और जो बीमारी अंदर है उसी का इलाज प्रॉपर ढंग से साइंटिफिक तरीके से हो। तो मेरे 2 ही मैसेज हैं, नो सेल्फ मेडिकेशन एंड गेट योर बीपी चेक्ड वंस इन ए ईयर। थैंक यू।
थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आप रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में आए और हमारे सभी लिसनर्स को दी इतनी बेहतरीन जानकारी। फिलहाल जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।